हरे कृष्ण। आज श्री नृसिंह चतुर्दशी महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थिति सभी भक्त वृंद मातृवृंद को इस्कॉन जोधपुर केंद्र की तरफ से विशेष स्वागत। तो इसे अभी श्री भगवान का अभिषेक आप देखें मायापुर में तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे संध्या समय अभी आया नहीं, लगभग 6:30 बजे तक आशा करते हैं। तो यहाँ पर अभिषेक 6:30 को आशा करते हैं करेंगे, तो 6:30 तक हम कुछ अभी चर्चा करेंगे। फिर अभिषेक के बाद तुरंत कुछ एक छोटा नाटिका प्रस्तुत करेंगे, कुछ ड्रामा स्टूडेंट्स ने। ओके, तो उसके बाद ड्रामा प्रस्तुत होगा, उसके बाद में भोग, उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद अगर आप जाना चाहें जाएं, अगर आप रहेंगे सुना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो काल परसों, क्योंकि नरसिंह भगवान के चरित्र तो इतने कम समय में हम जहां से शुरू किए थे, काल हम चर्चा किए थे केवल प्रहलाद महाराज को, दूसरे बार उन्होंने स्कूल से बुलाए। अरे क्या कर रहे हैं, बैलून्स। तो अभी दूसरी बार गुरुकुल से आए हैं, उनके पिताजी के साथ उनका चर्चा हो रहा है। अभी उसके बाद नारद जी ने जो बोले थे कि इतने स्नेह पुत्र पिता उनके छोटे पुत्र को किस प्रकार क्रोधित हुए, किस प्रकार क्या क्या और हुआ, ऐसा स्थिति आया कि ये छोटे पुत्र के लिए उनके पिता महाअसुर सम्राट हिरण्यकश्यप को क्या क्या झेलना पड़ा, अंत में उनका वध हो गया। ये सारे विषय और नरसिंह भगवान के प्राकट्य, ये सारे विषय को अगर ठीक क्रमानुसार सुनने चाहेंगे तो अभी भी 3 दिन के समय चाहिए। तो अब आधा घंटे के अंदर सारे कहें, आगे 2 दिन तक उसको चर्चा करें आप जैसे चाहें, आप अगर नहीं आना चाहते तो उसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में जस्ट विल फिनिश इन हाफ एन आवर। आप लोग का मतामत क्या है, हम इसी प्रकार से प्रस्तुति करेंगे क्या, हाँ एक्सटेंड, बट यू आर कमिंग ओनली टूडे, दे आर द रेगुलर स्टूडेंट्स, सो वी कैन टेक हिज व्यूज। क्या चाहते हैं अपने, तो ठीक है, अभी शॉर्टकट में प्रकट करा देते हैं, अगर डिटेल फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे। व्हाट, आज एस्टरडे, तो आज एस्टरडे करेंगे तो आज प्रकट नहीं होंगे नरसिंहदेव, आज उनका तिथि है ना प्रकट होने का। अभी तो काल तक हम चर्चा किए थे कि प्रहलाद महाराज गुरुकुल से दूसरे बार वापस आए हैं, और हिरण्यकश्यप उनको जो प्रश्न पूछा कि आपके गुरुजी से आप लोग जो सीखा उनसे अच्छा क्या आपने सीखा ये बताओ, अधित उत्तमम, जो आपने अध्ययन किया उसमें उत्तम क्या बताओ। तो आंसर दे चुके हैं प्रहलाद महाराज नवधा भक्ति का, उस आंसर को सुन करके हिरण्यकश्यप का अंदर क्या रिएक्शन है, अब आप इसी स्थिति पर जाइए कि महाराज हिरण्यकश्यप स्वर्गाधिपति, स्वर्ग के अधिपति हैं, देवता लोग सब निकाल दिए हैं, पूरा स्वर्ग के अधिपति के रूप में बैठे हैं आपने महाआसन में। प्रहलाद महाराज गुरुकुल से आ करके, मैं कल बताया था, अपने माता के पास गए खा पी के, अति श्रृंगार होकर के पिता के पास, पतितम पादयो बालम, अपने चरण में पढ़ करके पिताजी को बड़े काकु भाषा में संतुष्ट करके उनको आशीर्वाद भिक्षा किए। हिरण्यकश्यप अपने छोटा बेटा का एतादृश व्यवहार से इतने वात्सल्य भाव से आ गया, उनके दिल पिघल गया, उनको उठ करके आसन से उठा करके गले में लिपट लिया, छाती में लगा करके उनके मस्तक को सुंग करके उनको चुंबन आदि दे करके बड़े स्नेह सख्त पूछा लगा, बेटा इस बार तुझने गुरु जी ने जो सब पढ़ा जो सीखा कोर्स में उसमें क्या अच्छा लगा तो बताओ। बहुत प्रेम और ममता से आसक्त होकर के पुत्र को पूछ रहा था और पुत्र ने ये डिसाइड किया कि गुरुजी से जो पढ़ा उत्तम बताऊं, ये तो गुरुजी नहीं है मेरे गुरु तो नारद जी हैं, नारद जी की शिक्षा से जो उत्तम वो बताऊं। तो उन्होंने नवधा भक्ति बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि इत्यादि। उसको सुन करके जब प्रहलाद महाराज बोलते रहे भक्तिश्च नवलक्षणा, इस नवलक्षण भक्ति को सुन करके हिरण्यकश्यपु का आपाद मस्तक रोमांचित हो गया, कांप गया। दूसरी बार भी यही बात, अब मोड़ करके टीचर दोनों खड़े थे, बेचारे तो सुले थे इस बार तो हमको इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस मिलेगा, हमारा तो सर्टिफाइड होगा। वो सुन करके थकते रहे, ही बेटा पूरा कंट्री में टप्पर हुआ था, ये क्या बात कर रहा है, ये तो हमारे कोर्स में है नहीं, सिलेबस में नहीं है। वो बेचारा डरे में खड़े थे, हिरण्यकश्यप सम्राट अपने वक्र चक्षु में गुस्से में मुंह मोड़ करके दोनों टीचर की ओर देखा, संधर अमर कोई खड़े थे, उनके दृष्टि पड़ने मात्र से वो लोग का हाल खराब हो गया, बिल्कुल थर थर काम करे। उनका धोती कुर्ता भी साथ ठीक स्थिति में होगा कि नहीं होगा, जो भी बहुत डर गए उन्होंने, और डांटा हिरण्यकश्यप ने उनको, देख रहे अरे मूर्ख तुम उनको सिखाए यही, ये क्या बोल रहा है, यही शिक्षा दिए तुमने, ये मेरे शत्रु का बात कर रहा है। बोल करके हिरण्यकश्यप डांटने वाला, अच्छा अभी पता चला मुझे, अभी पता चला, अभी तो गोद में है बेटा, गोद में लिए लिए टीचर को गाली दे रहा है, अभी बच्चे के ऊपर क्रोध नहीं कर रहा, बोले ये उसको जो सिखाए वही बोल रहा है, छोटा बच्चा है जो सिखा दो वही बोलेगा, है ना, नहीं छोटे बच्चे जो होते हैं उनका कुछ अपना नहीं होता, जो जैसे बोल दे हे ये भगवान है उसको प्रणाम करो तो वो भी सबको बोलेगा हे भगवान प्रणाम करो, वही सीखा वही बोलेगा, कुछ अपने तरफ से नहीं छोड़ेगा। तो जो बोल रहा है कि तो गुरु जी ने आप लोग सिखाए जरूर, यही बात कह रहा है, तो इसलिए उनके ऊपर गोद में बच्चे को लिए हुए उनके ऊपर क्रोधित ऊपर देखा कि आप लोग अभी पता चला आप मेरे मित्र की तरह मेरे से तनख्वाह लेकर के मेरे स्कूल चला रहे थे, लेकिन मेरे विपरीत कोर्स चला रहे हैं, मेरे शत्रु पक्ष को पाठ पढ़ा रहे हैं, इसी डांट अभी पता चला। हाँ मुझे भी पता है, कभी कभी कोई दुर्मित्र मित्र की तरह तो रहते हैं लेकिन अंदर में और कुछ भाव है उनका, शत्रुता भाव है, वो लोग बहुत अपने काम निकालने के लिए काम करते, लेकिन कभी कभी जब उनका पाप घड़ा भर जाता है, निकल पड़ता है उनका दुष्परिणाम, उनका पोल खोल जाता है, जैसे उदाहरण देता है हिरण्यकश्यप, जैसे कभी कभी महापापी आदमी अपने पाप को ढांक करके अच्छा सभ्य व्यक्ति बनकर रह रहा है समाज में, लेकिन समय आने पर वो पाप रोग के रूप में प्रकट हो जाता है, क्षय रोग कुष्ठ रोग इस पाप के परिणाम होता है, इस रोग में प्रकट हो जाते तब पकड़ा जाएगा, अरे पता चला तू कैसा पापी, इसे प्रकट हो जाते। इसी प्रकार तुम मेरे तनख्वाह लेकर के मेरे कृतदास के रूप में टीचरशिप कर रहे हैं लेकिन क्या सिलेबस पढ़ा रहे तुम, यही पढ़ा रहे आपने, अब पता चल गया। उसका कहने का तो वक्रोक्ति में अभी देखता हूँ आपको, आपको ठिकाना करता हूँ, शास्ति दूंगा अभी। तो इसी प्रकार के भाव को समझ करके दोनों टीचर इतने डर गए, बोले सरकार सरकार ऐसा मत कहिए, मत देखिए हमारा, देखिए मत अमर जाएंगे, आपकी दृष्टि पड़ते हम कांप गए हैं, ऐसे मत कीजिए सरकार, आपके चरण पकड़ करके शपथ करके कह रहे हैं, ना मत प्रणीतम ना परत प्रणीतम, ना हमने पढ़ाया ना दूसरे किसी में भी लाया, कोई है ही नहीं, हमारा लाइब्रेरी में ऐसा पुस्तक ही नहीं, हम खुद ही नहीं सीखे पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते, हमारा कोई सिलेबस में नहीं है। सर इतना मत कहिए, हम सच बताते हैं, आपके शपथ लेकर के सुबह शाम आपका ही कीर्तन करते हैं, आपको आरती उतारते हैं, कुछ नहीं जानते हैं हमने, ये बच्चा कहाँ से सीखा पता नहीं, नैसर्गिक की मति, ये अपने आप से कुछ बोलते हैं, हम नहीं बोले उनको। जब ऐसे गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़ कर ब्राह्मण दयो शपथ लेकर के कहे, तो सम्राट हिरण कुछ बोला डर के मारे कल झूठ नहीं बोलते हैं, सच बताएंगे ब्राह्मण, इतना झूठ तो नहीं बोलते, तब विश्वास हो गया कि उन्होंने नहीं सिखाया और नहीं पढ़ा। तब मोड़ करके बेटा की ओर देखा, अरे अभद्र तेरे गुरुजी बताते हैं वो नहीं पढ़ाए सिखाए, तू कहां से सिखा रहे ये सब बात? जो तेरा पितृव्य को हंता है, तेरे चाचा को जो वध किया था, वो हमारे चिर शत्रु है, तू उनके गुलाम बन रहा है, उनके दासत्व तो कर रहा है। ऐसे नमक खराब विमान तो कैसे बन गया बचपन से? ऐसे भद्र बात तू कैसे सिखा? लगता है छद्मवेश का आके सिखाते हैं क्या? अरे कोई सिखाने पर भी तू कैसे सिखा? तो सोचता है कि तू सोचता है कि तू अभी से विष्णु की भक्ति करके विष्णु का भलाई करेगा, विष्णु भी ठग जाएगा। क्यों? अरे तू तेरे माता पिता का भी पंचहायन, 5 साल का लड़का हो, तू माँ बाप को भी धोखा देता है, उनका नहीं बना, जो तुझे खुराक पोशाक लालन पालन सब कुछ कर रहे हैं उनका नहीं बन पाया, उनको भी धोखा देता है, तू विष्णु के बनेगा? उसको भी धोखा देगा, उसका कोई काम के लायक बनेगा? तू कामगार है, कहीं के नहीं है तुम। जब अभी से आपने जो है माता पिता उनको भी नहीं बन पाए तो उनका क्या बनेगा, पर का क्या बनेगा? तो बोलते हैं तेरे साथ तो ट्रीटमेंट, सच बताओ कैसे सीखा तुझे ये बात, कैसे तेरे मन में आया? तो प्रहलाद महाराज ने बोलते हैं कि नहीं, मैं गुरुजी ने नहीं बताया, गुरुजी ने नहीं बताया, तू कहां से सीखा? ये सीखा तो गुरुजी से बढ़कर कोई ज्ञानी और है क्या? साक्षात शुक्राचार्य के लड़के हैं, पीएचडी होल्डर हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, सारे शास्त्र के ज्ञाता हैं, इंद्र जिसका पादपीठ सम्मान करता है ऐसे शुक्राचार्य के पुत्र है, शुक्र पुत्र, तू उनको बात नहीं मानते? तू कोई शास्त्र जानता है? उनको पता नहीं, तुझे और शास्त्र पता है, उसको बताता है। तो प्रहलाद महाराज के पिताजी, ना तो आप समझेंगे ना वो तुम्हारे पेट के गुरुद्वय वो समझेंगे, उनके मते कृष्ण से कैसे नहीं लगेगा? कृष्ण अगर शास्त्र में है तो सारे शास्त्र पढ़े उनको नहीं पता होता? क्यों पता नहीं? बोले शास्त्र में तो है, वो शास्त्र को पढ़ते में ये नहीं समझ में नहीं आता, ना शास्त्र पढ़कर क्यों समझ नहीं आएगा? संस्कृत के स्कॉलर है, सारे शास्त्र विद्वान है, क्यों नहीं समझ में आएगा? बोले क्योंकि वो जो भगवान के प्रति समझ, भगवान के समझ केवल ज्ञान से नहीं होता, पढ़ने से नहीं होता, व्याकरण के ज्ञान से नहीं होता, फिर कैसे होता? बोलते हैं पिताजी, मतिर ना कृष्णे परतः स्वतोवा मिथ विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर इसताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। जो केवल संसार में आकर के कैसे अच्छा खाएंगे, अच्छा से रहेंगे, अच्छा से सब संबंध करके फिर मर जाएंगे, इसी के करने के लिए जीव संकल्प लिए व्रत धारण किए, वो कृष्ण के बारे में कभी समझ नहीं सकते। स्वयं प्रयास करके दूसरे को उनको हेल्प करे, दोनों मिल करके तभी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तू कैसे सीखा? मैं नहीं सीख पाऊंगा, इतने क्वालिफाइड तेरे टीचर वो नहीं सीख पाएंगे, तू सीख गया, कैसे सीख गया बिना पढ़े लिखे? बोलते हैं कि ये कृष्ण के विष्णु के भक्ति के बारे में सीखने के लिए जो योग्यता है, जो आवश्यकता, क्या? नवनीत जावत, बोलते हैं जब तक मही असीनांग पाद रजोभिषेकम, महान पुरुष भगवत भक्तों का पाद रज से अभिषिक्त नहीं किए बिना कोई इस बात को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। यही श्रुति वाक्य है, यही श्रुति वाक्य है कि न मेधया न बहुना सुतेन, ना ज्ञान के द्वारा, ना तपस्या के द्वारा, ना सुन करके, किसी के द्वारा भगवान को नहीं लब्ध नहीं, वो सूत्र होते हैं। तो कैसे? यो एव वृणुते तेन लब्ध, वो जिनको खुद चुन करके स्वीकार करते हैं वो उन्हीं को वो प्राप्त करते हैं, उन्हीं के सतशेष आत्मा विवृणित तनुश्याम, उनके सामने सामने उनको प्रकट करवाते हैं, सभी के सामने नहीं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्त, वो हमेशा अपने ढंग कर देते हैं, जिस जिसको दिखाना चाहते दिखाते, सभी को नहीं। तो इसलिए ना आप ना ये गुरुजी ये दोनों समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ना तो वो जानते ना आप जानते हैं। तो इसी बात को सुन करके कि ये हरि के बात ना तो वो जानते हैं ना मैं जानता हूँ, आप उनके भक्तों की पदरज के अभिषिक्त हुआ है, उनके द्वारा आप जानते हैं। तो हिरण्यकशिपु इस प्रकार आपने शत्रु पक्ष का बात को सुन करके महारुषा इतने क्रोध से आक्रोश से कंपित हो गया। अभी बेटे को बड़े प्रेम से गोद में लिए रहा था लेकिन क्रोध बढ़ गया। आपने शत्रु पक्ष का चर्चा आपने बेटे से मुंह से उनकी प्रशंसा सुन करके पहले तो सुना था माफ कर दिया, दूसरे सुना था, तीसरी बार बारंबार जब कहे बारंबार उनके शत्रु की प्रशंसा किया तो उनको सहन नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ, इतने क्रोधित हुआ, प्रखर श्वास लेने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसका क्रोध ऐसे हुआ जैसे को विषधर सर्प सोया हुआ है रास्ता में और आप हाई हील चप्पल पहन कर जाकर के उसका कुचल दिए उसका पूछ को। कभी ऐसा किए नहीं होंगे आपने, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कहीं हुआ होगा देखना। वो सांप तुरंत पूछ के ऊपर खड़ा हो जाएगा फुत्कार करते हुए, इतने गुस्से में आक्रोश में आ जाएगा। हिरण्यकशिपु इस प्रकार को विषधर सर्प को पूछ के ऊपर कुचल दिए जाने से जिस प्रकार भयानक क्रोधित होकर फुत्कार करता है, इस प्रकार क्रोधित होकर के फुत्कार करने लगा, चिल्लाने लगा हिरण्यकशिपु, तू अभद्र, तू द्वेषी, तो कुलांगार, हमारे कुल के कलंक हो, ऐसे गाली दे करके बोला तेरे बद्ध कर देना उचित है। क्यों बद्ध कर देना उचित है? बोलते हैं कि सारे समाज बैठे हैं ना राज्यसभा में, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्री जंत्री संतरी पार्षद सब बैठे हैं, सबके सामने आपने इतने प्रेम, क्योंकि ये बेटा को सारे लोग प्रेम करते थे, उनके गुण रूप ऐसा था सभी लोग उनके प्रति आकर्षित थे, अब उनको मर्डर करने का आर्डर दे रहा है, तो सब आश्चर्य देख रहे हैं कि ये सम्राट ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बोलता है कि मैं इसीलिए उसको मारने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरे पुत्र के लायक नहीं रहा, वो मेरे अहित कर रहा है। बोले भले औषधि द्रव्य जो हमारे शरीर के हितकारी औषधि द्रव्य जंगल में जो जड़ी बूटी जंगल में हो, लेकिन उसको जंगल से ला करके प्रेम से घर में रखने के लायक वस्तु है, कभी काम में आएगा? परेशानी में जड़ी बूटी काम में आएगा? उसको घर में रखे क्योंकि हितकारी है, लेकिन जो अहितकारी है उसको तो फेंक देना चाहिए, घर से उठा करके रखना नहीं चाहिए क्योंकि ठीक नहीं, काम ने कोई काम के नहीं। ये ऐसे है, हम खिला पिला करके नहला धुला कर पाल के रखे, देखो ये पूरा अहित कर रहा है, शत्रु की प्रशंसा कर रहा है, हमारा है ही नहीं। दूसरा उदाहरण दे रहा है, अगर कभी हमारा शरीर में किसी अंग में कोई महा बीमार हो जाए, जैसे कुष्ठ आदि, हठात कोई लेप्रसी कोई अंग में अंगूठी में इधर कहीं हो गया पता चला, कोई कुष्ठ हो गया कि कैंसर हो गया पता चला घाव हो गया, तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर बोला कि ये तो सीवियर कैंसर है, वो तो फैलेगा, तो करना क्या है? वो तो इनक्यूरेबल डिजीज, ठीक तो होगा ही नहीं, तो उचित यही होगा अंग को तुरंत काट करके निकाल दो, शरीर को पूरा फैलाने से पहले और संक्रमण होने से पहले उसको काट कर अलग कर दो, तो बाकी शरीर बच जाएगा, बाकी एक अंग को काट दो पूरे शरीर बच जाएगा, नहीं तो उसी के चलते पूरे शरीर सड़ जाएगा। जैसे एक बोरी आलू आपने खरीद के लाए, उसमें एक आलू सड़ा हुआ है, वो पूरे बोरी दुर्गंध हो रहा है, उसी के चलते एक आलू के चलते आप देखते हैं, सारा आलू तो ठीक है, इतने दुर्गंध कैसे, एक आलू उसके अंदर सड़ा हुआ है। तो आपको पता चला एक उस आलू को जब तुरंत निकाल कर ना फेंक देते तो बोरी के रखने के लायक नहीं, तो इसलिए उसको निकाल के फेंकना यही उचित कर्म है। तो इसी प्रकार ये हमारे पूरे वंश में पूरे कुल में ये तो एक कलंक निकला, महाव्याधि निकला, उसको इमीडिएट गट्रीट, उसको निकाल के फेंकना चाहिए, मार देना चाहिए, नहीं तो वो तो सारे वंश को खराब कर देगा, कलंकित कर देगा। तो ये पॉइंट दिया तो सबको मन में आया, बड़े बड़े असुर राज बैठे थे सेनापति, बोले वहां राजा जी सही बात करते, बिल्कुल युक्ति पक्का दिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं उसको अभी बध कर देना चाहिए, बध कर देना चाहिए। तो आप तो सबसे बड़े महाबली हैं, आप बध कर सकते हैं, आप गोद में लिए बैठे, नहीं मैं पिता हूं, अभी भी मेरा प्रेम उमड़ रहा है उसका प्रति, तो मेरे हाथ में जिसको मैं स्वयं अपने हाथ से प्रेम स्नेह देकर पाल पुसकर बढ़ाया, अपने गोद में बैठाया हूं, चुम्बन किया हूं, मथा सुंगन किया, मैं अपने हाथ से नहीं मार सकता हूं, मरवा दो, मैं पास करता हूँ, मैं नहीं मार सकता हूँ, इतने तो मैंने तो इसलिए फेंक दिया उठाकर उसके दुम नीचे फेंक दिया उसको, उठाकर गोद में बैठा था, उठाकर नीचे कचाड़ दिया उसको, फेंक दिया और अड़क दिया। जो बधिक है मर्डर उनको बोला लेकर जाओ वो मारो। सर किस उपाय से मारे, डिक्टेशन दे दीजिए, रस्सी में टांग दें, सुली में बैठा दें, कत्ल कर दें, कैसे मारे, तो डिटेल बताया उन्होंने। बैठते समय, उठते समय, चलते समय, सोते समय, खाते समय, नहाते समय, जेन तेन प्रकार ने बंद कर डाला उसको। लो वो मुझे रिपोर्ट देते रहना, कब कैसे मार रहा मुझे बता देना, ले जाओ इमीडिएट। तो बधिक गण आकर के उनके सामने उनके अलीगढ़ शिशु को छोटी सी उठा के ले गए, सभी देख रहे हैं, उठा के ले गए हिरण कुछ मूड ऑफ हो गया, अपने घर चला गया होगा। तो उनने उसको बद्धशाला में ले गए, एक जगह पर स्पेशल मर्डर किया जाता है ना, पशु बलि देते हैं, एक बद्धशिला होता है वही लेकर कत्ल करते हैं, बुचर हाउस होता ना, तो वहाँ ले गए उसको बुचर हाउस में, जहाँ बद्ध करेंगे, बद्धशाला बोलते हैं उसको। यहाँ ले जा करके और असुरगण जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लाए, जो जिसका पास अस्त्र था, महाबली बली असुर हैं सब, कितने मर्डर किए हैं, एक्सपर्ट है, अभिज्ञ है असुर मर्डर करने में, और विशाल विशाल अस्त्र शस्त्र महाबाहु लेकर के आए, ला करके दो हाथ में खूब जोर से प्रहार किए कि जल्दी मर जाए और रिपोर्ट कर देंगे सर, फोन कर दिए काम बन गया। तो पूरे शक्ति से प्रहार करने लगे चारों ओर से मिल करके, दस पांच लोग पूरी शक्ति से, ये पंचहार पांच साल के निहत्ता बालक, कपड़ा तक उतार पहना नहीं था, उतार दिए थे, बीच में बैठा करके बद्धशिला पर चारों ओर से महा अस्त्र के द्वारा पूरी शक्ति से चोट कर रहे थे उसके ऊपर, चोट करते पहले वाला चोट किए, चोट करके देखते हैं चिल्लाएगा रोएगा भाग जाए क्या करेगा, हाथ पर बांध के रखे थे, कहीं भाग ना जाए इतने जोर से मारेंगे, अगर नहीं मरा इधर लगा तो चिल्लाया कुछ करेगा रोएगा छटपट होगा, इसलिए हाथ पर बांध बूंद कर बैठा कर मार रहे थे। लेकिन पहले जोर से एक मारा चोट तलवार से, कुछ नहीं हुआ, लगा उसमें सर में एक बाल भी इधर उधर होता कुछ नहीं हुआ, डिजाइन में नहीं फर्क आया उसका बाल का, और उल्टा परिणाम क्या हुआ, वो मार कर खूब जोर से देख रहा था, वो चिल्ला चिल्ला के रोने की वजह से मुंह खोल कर हंसने लगा, मुस्कान किया प्रहलाद ने, उनका गुस्सा तेज बढ़ गया है, ये डोज कम हो रहा है उसके लिए, मैं इतने जोर से मारा हूं तो हंस रहा है, तो और शक्ति से मारो, उठा करके और शक्ति से चिल्ला करके मारा, और जोरदार हंसने लगा, हद हो गया, पूरे गुस्से में उठ करके सांस ले करके मारा, अब तो वो अस्त्र ही टूट गया, उनका हाथ भी जोखम हो गया, और ज्यादा हंसने लगा, किसी जोर से मारता है उसका अस्त्र ही टूट जाए और मेरा कुछ ना हो, हंसना हंसने लगे और क्या करेंगे, हंसेंगे, वो तो बोला मेरा हाथ ही टूट रहा है, अस्त्र ही टूट गया, उसको कुछ हो नहीं, हंस रहा है। दूसरा आया, वो दूसरा अस्त्र लेके बोला नहीं तलवार काम नहीं करता है, बच्चा में मारू, बच्चा उठा के चलाया खूब जोर से, एक मारा इतने जोर से उसका जो धार था वो टेढ़ा हो गया, बैंड हो गया, फेंका। दूसरा लाया जो बिल्कुल स्टील स्टेनलेस स्टील वाला, वो चलाया, वो भी बैंड हो गया, बोला इसमें नहीं मरता, भल्ला लाया उसमें मारू, जो अस्त्र लाया उसमें चलाया, चलाकर कुछ नहीं हुआ, उसको भी हाथ चार पांच बार मारा तो उसके दुखने लगा, वो भी बोला ये नहीं, अरे हंस रहे काम नहीं कर रहे। तो एक साथ में दस मिले, बोले एक साथ में दस प्रकार अस्त्र से दस जन मिल करके दस ओर से मारे, तभी मारे तब भी हंसते रहा, कुछ भी नहीं हुआ, दसों का हाथ टूटने लगा, अस्त्र टूटने लगा, उनका कुछ नहीं फर्क पड़ा, बंधे हुए हाथ पर हंस रहा है। अब इतने डर गए, रिपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, शाम हो रहा है, सुबह से शाम तक कार्यक्रम चला, कई ब्याच वाइज आए, फर्स्ट ब्याच सेकंड ब्याच शिफ्ट वाइज आते थे, शिफ्ट वाइज नाना प्रकार के अस्त्र, और थोड़ा बलवान जो जिम खाना में जाकर अभी अभी फ्रेश कसरत करके आए हैं, ऐसे ऐसे ब्याच को भेजा जा रहा था सिलेक्टेड। शाम तक कार्यक्रम चला मारने के लिए, शाम के समय हिरण्यकश्यप का फोन आया, सो अब क्या उत्तर देंगे, सार क्षमा करे सार, क्या कब डेथ रिपोर्ट बताओ, कब मरा ना, सार मरा नहीं, मरा नहीं, अब मरा नहीं, वैसा बोलने से हमको मार देगा, ना सार, ऐसा मत कहिए, सारे अस्त्र शस्त्र टूट गया है, हम सभी का लगभग हाथ जख्म हो चुका है, हाथ भी टूट गया है, लेकिन वो मरे नहीं। व्हाट? नहीं सार, पूरे प्रयास किए, आप आकर घटनास्थल में देख सकते हैं। हम अभी जा रहे हैं सब एडमिट करने के लिए ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में, करंट कंटैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ हुआ ही नहीं। ये रिपोर्ट जब मिला शाम के समय, हिरण्यकश्यप को टेंशन में आ गया, क्या छोटा सा 5 साल का लड़का, उसको सब मिलकर मार नहीं पाए, तो दोबारा फोन किया, ओके यू यूजलेस, सेंड हिम टू दिस साइट, उनको भेजो। कहाँ भेजो? ना उसको 20 देकर मार दे, आप अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकते, जहर देकर मार दो उनको। तो जितने अप टू डेट पॉइजन बाजार में अवेलेबल था, वो सब वैरायटी लाए, वो सबको मिलाकर भी क्या पोटासाइट, क्या साइनाइड, पोटासियम साइनाइड, उससे भी और हाई क्वालिटी का उन समय में होगा, क्योंकि ये तो केवल हमारे पृथ्वी लोक से अवेलेबल है ना, वो तो हेवनली प्लैनेट का बात है, उनका और हाई कैडर के होगा पॉइजन। तो सब ला करके, सब मिला करके एक साथ में, अलग अलग से सब मिला करके थोक में पॉइजन खिलाए, और बड़े प्यार से खाए प्रहलाद महाराज, वे मिला कर देते होंगे जैसे जूस में, फ्रूट सलाड में, क्योंकि वो तो वेजिटेरियन है, नॉनवेज तो खाएंगे नहीं, तो जो प्रसाद उनका जैसे देंगे वो तो जैन तुरंत दोनों ने अफरिंग करते हैं, प्रणाम करके अफरिंग करके पा लिए, पा ली थी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे पूरा पा ली, वो थोड़े खड़े होकर देखते, ये पॉइजन तो 2 मिनट में रिएक्शन करना चाहिए, 2 घंटे तक बैठे, मुंह सूख गया, काला पड़ गया बेचारे, पॉइजन वो खाया, रिएक्शन उनमें हुआ। पॉइजन दिलाने वाला आधा मरा हो गया, क्यों? राजा क्या करेगा हमारा, वो मरी नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहे, उसका हंस रहा है, तो उनका चेहरा उतर गया सबका। फोन किए, तुम्हारा पॉइजन डुप्लीकेट है, काम नहीं कर रहा है, दुकानदार को बोले नोटिस करूंगा राजा को, तुम्हारा डुप्लीकेट पॉइजन बेच रहा है। वो बोला कि मैं प्रोड्यूसर को बोलता है कि पॉइजन काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्या, ओरिजिनल पॉइजन दो। कहां से प्रोड्यूसर से फैक्ट्री से मंगा करके दोबारा खिलाए उनको, पूरा दिन के अंदर रिपोर्ट देना है ना, सारे प्रकार से ऊपर से नीचे तक डर के मारे कि राजा सबको हिसाब लगा, ये कंपनी का पॉइजन काम नहीं कर रहा है, दूसरे कंपनी का लगा, सारे कंपनी वाले भी थर थर कांप रहे हैं, ये क्या हो रहा है, पॉइजन काम नहीं कर, लेकिन एक से लेकर के सारे लोग काले उतर गए, उनका चेहरा कुछ नहीं हो रहा है, हंस रहा है। शाम को रिपोर्ट आया सार, एक्सक्यूज मी सार, क्षमा करे, वो नहीं काम कर रहा है। ऐसे प्रकार से गिड़गिड़ा करके रो करके रिपोर्ट दिए, हिरण्यकश्यप कन्विंस हो गया कि बेचारे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो बेचारे असहाय क्या करेंगे, बहुत दुखी होकर बोले, बोला यू नॉनसेंस, फॉरगेट, स्टॉप इट, बोला दूसरे केस में भेजो उसको, क्या, बोला उनको ले चलो समुद्र में फेंक दो, उड़ा कर ले जाकर, ये बैठा करके वायुजान में ले जाओ, लेकर समुद्र बीच में भेज देना, प्रशांत महासागर में डाल दिया जान। तो ये प्रयास किया गया पानी में डुबा करके मारने के लिए, पानी पे डुबा, कई कई तो लेकर के बोले फेंकने से तैर तैर के फेंके, लेकर के नदी में समुद्र में कुछ नहीं हुआ, सोल के तैर के आ गया, तो दोपहर तक तो फेंक फेंक करके देखे कुछ नहीं हुआ, बोले फेंकने से उठ के तैर के आ जाता है, छोटा बच्चा कहाँ स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए, पता नहीं समुद्र में तैर जाता है, कोई उठा के बचा लेता है उसको, बोले उसको पकड़ करके पानी में डुबा कर रखेंगे तो मर जाएगा, पानी में डुबा करके रखे 10-5 बड़ा साड़ी बल्ला आ करके ऊपर से शाम तक डुबा के रखे, शाम तक छोड़े, हंस रहा है, उन्हीं का दम निकल गया पानी में खड़े होते होते डुबा कर, उन्हीं का तो ऐसा, उनका कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी में जलचर जीव की तरह था। भगवान के सृष्टि ऐसे अद्भुत है, थोड़ा शरीर में डिजाइन फर्क कर दिए हैं, नाक कान में डिजाइन में कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा फर्क किए, और पानी के अंदर वो रहेंगे, हम ऊपर में रहेंगे, तो ऊपर आने से मर जाएंगे, हम पानी के नीचे मर जाएंगे, यही देखते कितना फर्क है ना, थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन में है, इतने में एक डिजाइन अंतर कर दिए, वो हवा में आकाश में उड़ते हैं, हम तो जाने से मर जाएंगे, थोड़ा सा अंतर, मतलब भगवान की अद्भुत सृष्टि है। तो वो कुछ नहीं हुआ उनको, समुद्र में फेंके मरा नहीं, पानी में डुबा कर रखे थे मरा नहीं, शाम को रिपोर्ट आया सारा, एक्सक्यूज मी, वो भी काम नहीं किया, बोला नॉनसेंस, छोड़ो इसमें नहीं मर रहा है, देखो उसको ले जाओ हिमालय आदि चोटी में, ऊपर से लेकर वहीं से फेंक देना, मर जाएगा, नीचे सिला के ऊपर फेंक देना, मर जाएगा। तो ये उपाय किए, ले गए बड़ी बड़ी गिरी श्रृंग पर ले जा करके, उस श्रृंग को चढ़ने के लिए लोग चढ़ते चढ़ते मर जाते, लेकिन उसको लेकर गए, लेकर बद्ध शिला पर लेकर ऊपर छोड़ दिए, वो कोई हजार मीटर ऊपर में, कई किलोमीटर ऊपर से ले जाकर छोड़े, हंसते हंसते नीचे आकर के घूम कर घर, वो ऊपर से आकर के घर पहुंचे, वो आकर बैठ कर खेल रहा है खा पी कर। अरे यू ना, यस आई एम हियर, इतने मुंह सूख जाता था, अरे तू कैसे आया, तुझे यहां से फेंके थे ना, दुड़का आ गया। अच्छा भाई, हताश हो गए, वो भी रिपोर्ट दिए सर, वो भी काम नहीं किया। तो बोला चलो ऐसे काम नहीं होता, उसको ले चलो सर्प घर में, होता ना विषधर सर्पों का बड़े बड़े कलेक्शन होता है, तो हिरण्यकश्यप का किया था कुछ चिड़ियाखाना जू वगैरह ऐसा था, सर्पयांट जू, बोला यहाँ ले जाओ, उसके अंदर छोड़ दो, बांध कर रखो, सुबह से लेकर छोड़ दो शाम तक, तो काट खा जाएंगे। लेकर के उसके सर्प गृह में रखे, माँ विषधर क्रोधित सर्प के अंदर डाले, और सर्प को उस दिन कुछ खाने के लिए दिए ही नहीं, बाकी समय चूहा पुआ कुछ डालते थे, उस समय कुछ ही नहीं दिए उस दिन, बोले उसी को खा जाएंगे। सारे विषधर सर्प आते, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा था, राजस्थान में कहीं कोई कहीं कहीं एक लड़का सांप के साथ बैठ रहा है, कुछ सांप नहीं काट रहे, इज इट फैक्ट, आप लोग कोई देखें नहीं देखें, आपका वीडियो है ना, अब दिखा दो उनको, अब देख सकते हैं, राजस्थान के कोई पर्टिकुलर एड्रेस कहीं जगह में है, छोटा सा बालक है 7-8 साल का, महाभाव विषधर सर्प 10-20 उन्हीं के साथ रहता है, वो उनके सोता है बैठता है खाता है, कुछ नहीं करते सांप उन करते हैं, पूरा फन फैंग लेकर देखते हैं, बिल्कुल वीडियो है, तो उसको फोटोग्राफी लिया गया है उसका, तो ऐसे उनका भी कुछ नहीं हुआ। तब रिपोर्ट आया, उसमें नहीं मरा, तब बोला उसमें नहीं है तो पानी में तो आग में लगा दो, जला दो, से पुटी मिल फायर, तो आग में जलाए। तो मतलब कहने का है कि जितने जितने उपाय हो सकता है मार डालने का, कोई एक कसर नहीं छोड़े, एक भी कसर नहीं छोड़े, जो हिरण्यकश्यप ने बताया सब बताया, जो नहीं बताया वो आपने पॉलिसी में भी लगा करके आउट ऑफ द वे जा करके, कि मर जाने के बाद राजा ने खुश होकर इनाम देगा, इस प्रकार से मार डाले, इसमें जो जितने और उपाय हो सकता है कोई कसर नहीं छोड़े, सब प्रकार के प्रयास पूरी पूरी किए, सब में नाकामयाब रहे। जो रिपोर्ट डे टू डे आते रहा, इसमें नहीं मरा, जब 8 दिन का रिपोर्ट आया, सारे 8 प्रकार के उपाय फेल, और भी उपाय कर रहे हैं फेल, केवल नेगेटिव रिपोर्ट आता था। डे बाय डे हिरण्यकश्यप का जो राजवैद्य थे, जो उनका शरीर के जांच रहते थे, उनका नक्शा जो क्या कहते हैं उसको, ग्राफिकल चार्ट, जो चार्ट है वो चार्ट बिल्कुल सीरियस होते जा रहा था, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर पूरा हाई चल रहा था, जैसे रिपोर्ट आया उसमें नहीं मरा, व्हाट, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई, और जब सुना कि ये सारे उपाय से मरा नहीं, वो तो स्वयं मरने वाला था, इतने हाई टेंशन में आ चुका था कि रियल डॉक्टर रिपोर्ट दिए, राजकीय मीडिया में घोषणा कर दे कि महाराज इतने चिंतित है, इतने टेंशन चिंताग्रस्त है, हो सकता है उनका हार्ट फेल हो जाए, कि क्या होता है सर में वो, हाँ नहीं नहीं ब्रेन हैमरेज है, शायद ब्रेन हैमरेज हो जाए या हार्ट हैमरेज हो जाए, कुछ हैमरेज हो जाए उनका, इसी स्थिति आ चुका है सम्राट का, इसी स्थिति को न्यूज को पा करके संडा उमर को दोबारा दौड़ कर, हाँ 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 राजा जी मर जाएंगे, इसे हार्ट फेल हो जाएगा, इतने टेंशन, दौड़ करके आए, आ करके राजभवन पहुंचे, हिरण्यकश्यप बिल्कुल सिक बेड में था, सारे उपचार चल रहा था, हाई टेम्परेचर, फुल टेंशन, क्यों टेंशन, उसके पास आकर जो मित्रवत, महाराज आप इतने महाबली है, इतने पराक्रमशाली, इतने प्रभावशाली है, ना क्या प्रभावशाली है, मेरा उम्र बढ़ रहा है, बूढ़ा हो रहा हूँ, और ये बेटा अभी बढ़ रहा है, युवक होगा, सारे उपाय कर लिया, मर भी नहीं रहा है, डर भी नहीं रहा है, भाग कर जा भी नहीं रहा है, तो मेरा तो खबर लेगा, सारे देख रहा है, वो बड़ा होगा मैं बूढ़ा होऊंगा, बुढ़ापन में सारे हिसाब किताब मेरे से लेगा, हाँ हाँ मेरा क्या होगा रे, भविष्य चिंता करके मर रहा था, रो रहा था, क्या करूं मर भी नहीं रहा है और घर छोड़ के भाग जाता हूं, जा भी नहीं रहा मेरे पास आता है फिर भी, और मुझे तो मार डालेगा, ऐसे करेगा, ऐसे रो रहा था हिरण्यकश्यप। मैंने सिख बेड में हॉस्पिटल में पढ़ करके, तो देखने के लिए आए थे संधा मरकर, आकर उनको सांत्वना वाणी बोले, महाराज ऐसे मत रोइए, ऐसी चिंता की बात नहीं, बेटा है छोटा सा बालक, अभी इसे कोई बात नहीं, इसे कुछ आप तो हमारे पिताजी को जो जानते ना, हाँ जानता हूँ, कितने बड़े आचार्य ना आप, खबर आया है कुछ दिन में वापस आ रहे हैं हिमालय से, वो आ रहे ना, आप जानते हो कितने पारंगम है वो, उनको ऐसे ही बुद्धि सुधार देंगे वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा बुद्धि खराब है, बालक है और क्या है, आप थोड़ा बड़ा है तो सयाना हो जाएगा, पिताजी आते हैं उनको सुधार देंगे ठीक हो जाएगा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। तो उनका इस प्रकार काउंसिलिंग, क्योंकि वो जो डिप्रेशन में आ गया था उनको काउंसिलिंग काम करेगा, तो ऐसा स्ट्रांग काउंसिल किए संधा मर्क ने, तो उनको काम कर गया, सारे मेडिसिन फेल हो गए थे हिरण्यकश्यप का, हॉस्पिटल से इसे काउंसिलिंग किए संधा मर्क ने, तो उन्होंने ठीक होकर वापस बोला, तो ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए साहब, हम ले जाते हैं हॉस्टल में रखेंगे, कोई टेंशन नहीं, हम रखेंगे वही खिला बोर्डिंग स्कूल में रखेंगे, ठीक कर देंगे, पिताजी आएंगे तो सुधार देंगे, टेक हिम आउट इमीडिएटली, उसको लेके जाओ। तो गुरुपुत्र दे तीसरे बार उनको ले गए, बोले अभी इसको ठीक ठाक से पढ़ाएंगे सिखाएंगे, सीख जाएगा, बोर्डिंग में रखेंगे और पिताजी भी इतना ठीक हो जाएंगे, काउंसलिंग करके बेटा को फिर ले आए। अभी तक सारे एक्शन फेल हो चुका है, सब हताश हो चुके हैं, अभी ले करके आए, बोले एक ही होप रह गया कि शुक्राचार्य आकर के उनको सिखाएंगे सुधर जाएंगे, अभी घर में नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, चलो हॉस्टल में जाकर छोड़ो रहना, अब बुलाऊंगा नहीं उसको कभी भी, पहले तो बुलाता था देखने के लिए, अभी कोई प्रेम रहा प्रेम प्यार रहा नहीं, देखने की इच्छा भी नहीं खूब डर रहा है देखने के लिए उसको क्यों मेरे ऊपर एक्शन ना ले, तो इसलिए उसको वहीं रखो, वहीं रखा था, रॉयल स्कूल था, राजकीय महाविद्यालय था, और उसमें कई स्टूडेंट थे, सारे राज असुर कुल के जितने मंत्री मंत्री संतरी सब सभी के लड़के वहीं पढ़ते थे, और वहाँ का जो उनका कूटनीति और राजनीति का सब्जेक्ट था वो बड़े ढंग से भी पढ़ाया जाता था, बड़े रिप्यूटेड कॉलेज था वो, तो उसमें कई स्टूडेंट थे, तो प्रहलाद महाराज स्टूडेंट में अभी फुल टाइम हो गए, पहले पार्ट टाइम फुल टाइम हो गए, फुल टाइम होने के बाद पढ़ते थे तभी क्या हुआ, उनका जिस प्रकार के रूप था जिस प्रकार के स्वभाव गुण था, कुछ ही दिनों में कुछ महीनों में पूरे कॉलेज में जितने स्टूडेंट थे सबके दिल जीत लिए उन्होंने, सबके साथ इतने मित्रता संबंध हो गया, सारे लड़के कुमार साहब उनके पीछे, आप जो बोलेंगे चलो आप खाएंगे चलो खेलेंगे उन्हीं के साथ होते थे। सचमुच ये मनुष्य मात्र के स्वभाव होता है, एक नेता सब ढूंढते हैं लीडर, विदाउट ए लीडर सब बेगर, तो हमेशा कोई लीडर ढूंढते हैं, तो जहां तक मिलता है उसी पे जाकर जुट जाते हैं। तो जैसे संपूर्ण असुर बालक देखे कि ये लीडर लाइक है, सब उनके पास आते थे। एक दिन की घटना है, अब दोपहर का रिसेस समय, रिसेस जानते ना, खेल छुट्टी, उसको खाने का छुट्टी खेलने का छुट्टी जो भी कहो, मिडिल में थोड़ा एक घंटा का छुट्टी मिलता है। दोनों टीचर तो गृहस्थ थे, वो अपने घर में चले गए लंच करने के लिए, बच्चे लोग लंच क्या करने का है, उनको तो खेलने का है, वो 10 बजे खा कर गए थे सब, वो को खेलने का है, वो बेचारे गए लंच करने के लिए, वो सारे लड़के पूरे कॉलेज के आ गए कुमार के पास, जानते छोटे कुमार के साथ आ गए। वो प्रहलाद महाराज इतने सुंदर व्यवहार इतने सुंदर रूप, सारा आकर्षित, सारे आ गए होलसेल कॉलेज आकर, बोले कुमार चलिए खेलेंगे, चलिए वो खेलेंगे खेलेंगे, सर आप जो बोलेंगे वही करेंगे, कुमार जी आप बताइए। तो प्रहलाद महाराज ही टुक दी अपॉर्चुनिटी, इस समय को उन्होंने लिए अपने बस में लेकर, बोले बैठो सब बैठो, सब बैठ गए, उनके बात तो मानने के लिए सब तैयार थे, बैठ गए, बोले देखो आप खेलना चाहते हैं ना, हाँ आप जाएंगे तभी खेलेंगे ना, हाँ नहीं खेलेंगे आपके साथ में खेलेंगे, बोले अरे मित्रों आप खेलना चाहते हैं, खेल कर क्या मिलेगा उसमें, अरे खेलने क्या मिलेगा, क्या खेलेंगे सुख मिलेगा, खेलने के सुख, कितने दिन जिंदगी रहेगा आपका, बड़े सीरियसली बात करने लगे। उसे खेलने का समय में इसी के समय लेकर के उनको इतने गंभीर शिक्षा दिए प्रहलाद जी ने, छोटे छोटे स्कूल मेट को अपने क्लासमेट को बैठा करके बोले आपके जीवन की अवधि कितना है, कितने दिन जिएंगे अपने, उसमें से तो आधा दिन सोते सोते बिता देते हैं। अगर 100 साल के आयु है 50% तो सोने में गया, मुर्दा डेढ़ बड़ी की तरह सो जाते हैं, गया बाकी बचा कितना, उसमें से खेल कूद में 20 साल जाता है। जो बाकी बूढ़े हो जाते हैं रिजेक्टेड, गवर्नमेंट भी रिजेक्ट करता है, प्राइवेट वाले भी रिजेक्ट करते हैं, सब रिजेक्टेड, वो कोई काम के नहीं। 20-20-40 ऐसे गया, 50 साल सो के गया, 100 में 90 10 साल बचा बीच में, और 10 साल में घर के मेंटेनेंस में काम में क्या बचा तेरे पास, तेरे लिए क्या किया, व्हाट इज टाइम फॉर यू। लड़के सीरियस होंगे, बात तो सही कह रहे, ऐसे बात करके उनको सीरियस कर दिए प्रहलाद जी ने। सारे स्कूल के बच्चे सेम स्टैंडर्ड के, सेम उम्र के थे, सारे सीरियस हो गए। और आगे आगे आ सकता थोड़ा, आगे तो बहुत जगह है। ए प्रणाम, धर्म लेकर इधर आ जाओ, यहाँ के बैठ, यहाँ के बैठ। तो लेकिन अभी हाँ अभी से क्यों हुआ कम से कम देखेंगे। तो जैसे आकर के पहुंचे सारे लड़के, तो उनको सिखा है बहुत सारे, लंबा टीचिंग है, 2 अध्याय को उनको शिक्षा दिए वही घंटे के समय लेकर के। अब सारे लड़के सीरियस हो गए सुन सुनकर, तब करना क्या है, खेलेंगे नहीं सचमुच, टाइम बेकार जाता है तो करेंगे क्या, ना तत् प्रयास न कर्तव्यो यथा आयु व्यापरम न तथा विन्दते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। ऐसे टाइम बेकार करो मत, ऐसे टाइम खराब करो मत इस काम में, तो इसे समझा दिए, सब सीरियस हो गए। बोले व्हाट शुड डू देन, क्या करें, एक ही काम है, बाकी कोई काम के लायक हम है नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। केवल इस कलयुग में एकमात्र उपाय है हरि के नाम, हरि के नाम, हरि के नाम ही करो। तभी सत्ययुग था तभी भी यही उपाय बताए, क्योंकि आप बालक है, किसी काम के लायक नहीं, कुछ कर नहीं सकते। कीर्तन करो, हरि नाम करो। कैसे कीर्तन करें, हम तो कोई सिखाया नहीं, गुरुजी ने किए नहीं कि सिखाया नहीं, सिलेबस में नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे सीखें। घर में भी कभी कोई माता पिता, कोई चाचा काका, कोई कभी नहीं किए, तो बोले छोड़ो वो क्या जानते हो क्या सिखाएंगे, वो जानते नहीं कुछ, मैं सिखाता हूँ करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इस प्रकार कीर्तन सिखाए, और धुन में आकर के बड़े सिंपल ट्यून है, प्रभुपाद जी ने इसी ट्यून में जगत कुछ बदला दिए। जस्ट वन ट्यून फॉर 3 आवर्स, अकेले, कोई यंत्रपाती साउंड सिस्टम था नहीं, एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठ करके ऑल एलोन एक डफली बजा करके जस्ट दिस सिंपल ट्यून पूरे जगत को बदल डाले के 70 साल के वृद्ध व्यक्ति, और ये तो यंग थे, उनके सामने समर्पित बालक हजारों बैठे थे चारों तरफ, ये क्यों ना बदल जाएंगे, तो उनको बदल डाले। आप जब रिसेस ओवर हो रहा है, ओवर होने से पहले वो बेचारे लंच खा रहे थे गुरुजी लोग घर में, उनको साउंड आया, ये सो नाइस साउंड, कहां से साउंड आ रहा है, पहली बार सुने उन्हें, दे नेवर हर्ड इन देयर लाइफ, पहली बार सुने, खिड़की खोल कर देखे कि अरे बाप रे बाप सत्यानाश, सारे हॉल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इकट्ठा होकर कीर्तन कर रहे, भले मर गए, अब खाना क्या खाएंगे, उनका तो हार्ट फेल होने लगा, दौड़ करके आए, आकर कोई रुके रुकते नहीं, इतने प्रमत्त होकर के सारे लड़के कीर्तन करके नाच रहे हैं, कोई रुके मानते नहीं रुकते नहीं, बालक इमीडिएट फोन किए महाराज को, सार पूरा कलेजी खत्म, एक भी स्टूडेंट बचा नहीं, गए सब, बर्बाद हो गए। सारे कीर्तन कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु ये उसको सहन नहीं कर पा रहा, दिस इज टू मच। बोला लेकर आओ उसको, भी इमीडिएट लेकर आओ, इस बार उसको छोड़ूंगा नहीं, पहले मेरे बेटा करके मैं नहीं मारता था, आज आई विल किल हिम बाय माइसेल्फ, मैं खुद ही मार डालूंगा उसको, देख जो होगा। और तो असह्य अपराध हो गया, ये लिमिट होता है सहन करने का, बच्चा है, लेकिन दिस इज टू मच। बोला लेकर आओ आज मारूंगा, तो इमीडिएट उनको पुलिस जाकर पकड़ के ले आए, उठा करके अरेस्ट करके, वो कीर्तन चल रहा था उसे उठा लाए, ला करके लेकर आए। प्रहलाद महाराज के स्वभाव ही इतना है, इसी अवस्था में भी उठकर आए, डांट पीट करके लेकर आए, पिताजी गुस्सा में देख रहे, आओ बदमाश मार डालूंगा तुझे, आकर के तुरंत पिताजी के चरण में गिर गए, पिताजी चरण धूली लेकर लगाए, पिताजी आशीर्वाद कीजिए। क्या आशीर्वाद करूं, नहीं आशीर्वाद कीजिए, मैं जैसे कीर्तन करूं हरि कीर्तन करूं, बदमाश मेरे आशीर्वाद से हरि कीर्तन करोगे? इतने गुस्से में बोला, तू दुर्मते, आज मैं तुझे मेरे हाथ से मार डालूंगा, तू बद्ध कचुग्य है, अभी तक मैं सहन कर रहा था, आज मैं मार डालूंगा तुझे। खड़ा हो गया, खड़ग निकाल लिया म्यान से मारने के लिए। प्रहलाद महाराज निडर, किसी को सामने मर्डर करने के लिए सामने 5 फुट सामने खड़ा है, अब खड़ग निकाल लिए, चिल्ला कर मारने जा रहे, डरेंगे नहीं, इज गोइंग टू मर्डर। प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भय, कोई खरोच भी नहीं आया मस्तक में, हंस हंस मुख में मुस्कान लेकर खड़े हैं। उसके हसमुख मुंह को देखकर हिरण्यकशिपु टेंशन में हो रहा गया, बोला दिस फेलो, अरे ना तो तू डरता है ना मरता है, तुझे कहां से बल आता है इतना, किस बल पर तू इसे निडर होकर खड़ा है? ओ, इस बात का जवाब देने लगे प्रहलाद महाराज, बोले माय डियर फादर, आप मुझे पूछ रहा है कि कहां से मुझे बल मिल रहा है, मैं इतने डिंग आकर खड़े उनके सामने, पावर हाउस तो पिताजी एक ही है, पावर हाउस एक ही है, यहीं से मुझे भी आता है, कूलर को हीटर को दोनों जगह को सप्लाई एक ही पावर हाउस से आता है, उसको कूलिंग करता है उसको हीटिंग करता है, लेकिन पावर तो एक ही है, करंट एक ही है ना, आप मत समझो कि कूलर के करंट अलग है हीटर की करंट अलग है, ना करंट ही सेम इलेक्ट्रिसिटी, वर्किंग इन डिफरेंट वे। क्या चाहते हो ना, मेरा बल नहीं आपके बल भी नहीं, आपके बल भी मेरा बल भी, सारे संसार में जितने बल ही है सभी का बल वहीं से आता है। नो इम्पॉसिबल, क्यों ना, मुझे तो कभी बल देगा नहीं, मैं उनका शत्रु हूं, और देने से मिलूंगा भी नहीं उनसे, तुझे भले देता होगा मुझे तो नहीं देता है, कन्फर्म मुझे नहीं देता, मैं नहीं लेता उनसे। बोला पिताजी आप माने नहीं माने, क्या है इतने गुस्सा हो रहे हैं, पूरी दुनिया को मैं जीत लिया। बोला पिताजी हंस करके बोले, पिताजी दुनिया को जीत लिए लेकिन शत्रु बाहर कोई नहीं है, कहां शत्रु है, ना आपके अंदर बैठा है, कौन है ना, तुम्हारे मन, तुम्हारे मन को नहीं जीता तो दुनिया को क्या जीत लिया, शत्रु तो आपके मन में बैठा है, उसको नहीं जीता तुमने तो कहां जीता हमने। बोले फॉरगेट दिस, मुझे बुद्धि दिखाने क्या आया, दुर्बुद्धि, मैं इतने एक्सपीरियंस्ड हूं, पूरे संसार त्रिलोक के राजा हूं, मुझे सिखाने के लिए आया, बताओ तेरा वो बल देने वाला हरि कहां रहता है, कहां है बताओ, पहले उसको देखता हूं बाद तुझे देखूंगा, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, कोई है ही नहीं, कहां है तुझे बल देता है, कहीं छिप छिप कर सप्लाई देता है मुझे लगता है तुझे, कहां है बताओ। जब कहां है पूछे, हिरण्यकशिपु ने बोले कि हिरण्यकशिपु पूछा तो प्रहलाद बोले पिताजी ये तो सर्वत्र है, एवरीवेयर, सर्वत्र, चारों ओर घूम करके देखा सभा में, कहां कोई है तो नहीं, इधर तो नहीं, कहां है ना, है मुझे नहीं दिखता, ये मेरा सामने इतने बड़े मुख्य सभा भवन का खंभा है, इसमें है ना, पिताजी है क्या, बैठे हैं दृश्य थे, मुझे दिखाई पड़ रहे बैठे हैं मेरे सामने, देखा आंख फाड़ करके, खंभा है कुछ नहीं दिखता। मन में सोचा शायद मैं एजेड हो गया हूं और चश्मा भूल गया, नंबर बदल गया होगा, मुझे दिखाई, वो बालक है उसको दिखाई पड़ रहा, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, शॉर्ट साइट। तो हो ना हो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, नहीं उसको तो दिखाई पड़ रहा, बैठा है बोल रहा है, पहले खंभा से मार देता, खंभा से इसको मार दूंगा तुझे बाद में मारूंगा। उठ गया था प्रहलाद को मारने के लिए, खड़ग तैयार करके बोला खड़ग में तुझे मारूंगा, एक मुष्टी का घात में खंभा को मार देता, खंभा को खड़ग में क्या मारूंगा। तो एक मुक्का मारा खंभा को, इतने महाबली था, विशाल मणिमय खंभा था, कंक्रीट भी नहीं, उससे भी और पावरफुल स्ट्रांग खंभा था। इतने जोर से मुष्टि का घात किया और खंभा फट गया, मुख्य खंभा फट गया। लेकिन फट गया तो इतने भीषण गर्जन शब्द हुआ, इतने विकट शब्द उत्पन्न हुआ, चारों ओर देखा शब्द कहां से आ रहा है, इतने बड़े साउंड कहां से आ रहा है, इतने भारी साउंड हुआ कि ऊपर से सत्यलोक पर्यंत, ब्रह्मा के लोक पर्यंत सथर थर कांप ले, बोले ये बिना टाइम में प्रलय कैसे हो रहा है, अब तो ड्यू डेट तो हुआ ही नहीं, अनड्यू प्रलय कैसे हो रहा है। सब सोचने लगे, जो असुर वीर स्नात से बैठे थर थर कांपने लगे, इधर उधर गिरने लगे, इतने भयानक शब्द था, पूरा भूकंप होने लगा। आश्चर्य होकर चारों ओर देख रहा था शब्द कहां से आ रहे, कहां से आ रहे। देखते देखते उनके सामने खंभा के अंदर से धुएं के साथ, सुगंधि के साथ दिखाई पड़े, एक अद्भुत रूपम, एक अद्भुत रूप दिखाई पड़ा। अगर आप सुनना चाहते हैं उसके बारे में बाद में बताएंगे, अब कैसे प्रकट होते हैं अब इसे कर लेते हैं, फिर बाद में कैसा होता बताएंगे, रूप वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री प्रहलाद महाराज की, श्री हिरण्यकशिपु जी की। हाँ वो उनके डियर डिवोटी हैं, ऐसा बात नहीं है। ओके, तब अब अभिषेक कीर्तन करेंगे, अभिषेक कीर्तन के साथ अभी सब अभिषेक में भाग लेंगे, दर्शन करेंगे। ऐसे कहा गया है जब भगवान के आरती होता है, पूजा होता है, अभिषेक होता है, जो पूजा करता है वो जितने फल प्राप्त करता है, जितने भाग लेता है, जो देख करके उसको ताली मारते हैं, उसको उसके साथ साथ कीर्तन करते हैं, वो कुछ ज्यादा उससे फायदा लेते हैं। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि अब थोड़े फायदा लो, अब ज्यादा ही फायदा लो, बैठे बैठे नहीं तो खड़े हो करके ताल के साथ, हाथ में ताली और मुख में बोली, इसके साथ कीर्तन में भाग लीजिए, तब कीर्तन का अभिषेक का पूरा पूरा फायदा और आनंद प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। उसको भी दे दो मृदंग वाला।
हरे जय नरसिंह, श्री नरसिंह, जय जय नरसिंह, उग्र महाविष्णु।